निर्विघ्न जीवन पसंद है सभी को, पूछने की तो बात नहीं है। विघ्न तो किसी को भी प्रिय नहीं है। टॉपिक बहुत सुंदर है और कई क्लासेज हो सकती हैं इस पे। मेरे साथ सामने कन्याएं बहुत आ गई हैं, उन्हें देख के भी मुझे कुछ संकल्प आ रहे हैं। पहला संकल्प आया, कुछ लोग अपनी गलत बातों के कारण अपने जीवन को विघ्नमय बना लेते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि हम गलती कर रहे हैं। जब अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, जब विघ्नों का चक्र भी उन्हें चारों ओर से घेर लेता है, तब समझ में आता है कि अब इससे निकलना बहुत कठिन है। हम आज चार तरह के विघ्नों की चर्चा करेंगे। व्यक्तिगत जीवन में विघ्न, परिवार में विघ्न, सेवाओं में विघ्न और चौथा विघ्न यज्ञ में। देखो, सोचने की बात है, जो यज्ञ स्वयं भगवान ने रचा, जिस यज्ञ का रक्षक स्वयं भगवान है और जिस यज्ञ में समर्पित सभी पवित्र आत्माएं हैं, उसमें भी आसुरी संप्रदाय विघ्न डालते हैं, तो और कौन बचेगा विघ्नों से संसार में? माताएं सभी बहुत पीछे हो गई है। मैं चाहता था आपसे बात करूं। माताओं को नीचे बैठने में तकलीफ होती होगी, मैं समझता हूं। फिर भी जो ताकतवर हैं वो आगे आ जाओ, जरा पीछे वाले खास, जिनको बैठना है वो बैठे। भाई लोग भी बहुत पीछे नहीं, थोड़े आगे के सोफे पे आ जाए, बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, दो यहाँ बैठ जाओ, बहन जी के साथ बैठो। ये टॉपिक बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही सुंदर है। हमें स्वयं को बहुत गहराई से देखना है कि हमारे जीवन में अगर विघ्न है तो उसका कारण क्या है। बिना कारण के तो कुछ नहीं होता। जैसे मैंने कहा, कुछ गलतियों से मनुष्य के जीवन में विघ्न आते हैं, कुछ विघ्न पूर्व जन्मों के कर्म के खाते के कारण आते हैं, कुछ विघ्न अपने संस्कारों के कारण आते हैं। एक व्यक्ति पूरा जीवन सुखी नहीं रहा, पता चलता है कि उसके सुखी न रहने के पीछे उसका क्रोध का संस्कार है। कोई भी उसे प्यार नहीं करता, कोई भी उसके समीप नहीं आता, कोई भी उसे साथ नहीं देता, सम्मान का तो प्रश्न ही नहीं उठता, तो उसे जीवन पूरा जीवन विघ्नों में व्यतीत करना पड़ता है। वो संसार में अपनी यात्रा में अकेला हो जाता है। सबसे पहली बात जो हम ध्यान रखेंगे, सभी मेरे साथ साथ इन बातों को अपने चित्त में समाएंगे। पहली बात, गीत में भी था, मुसीबतों को पार करके ही कोई हिमालय चढ़ता है। जिसने एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ने का मन बना लिया हो, उसे पता है तूफान बहुत लगेंगे, ऊपर ऑक्सीजन भी कम होगी, हम फिसल के गिर के मृत्यु को भी प्राप्त हो सकते हैं, बर्फीले तूफान चलेंगे, बर्फ से चलना पड़ता है, ठंड बहुत, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ना माना पहाड़ों पे चढ़ना नहीं है, बर्फ पे चढ़ना होता है, जहाँ दूर दूर तक पेड़ नहीं, बर्फ ही बर्फ, फिसल सकते हैं कहीं सीधी चढ़ाई कहीं ऐसी टेढ़ी मेढ़ी, गिरने वाली, पानी नहीं, ऑक्सीजन कम, थकान। लेकिन एक लंगड़ा व्यक्ति भी चढ़ गया, आपने सुना हो अभी एक आध साल में ही, तो पहले हमें अपने को तैयार रखना है कि जब हमने अपना महान लक्ष्य बनाया है तो बोलो, बोलना है आपको, विघ्नों को पार करना ही पड़ेगा। जो विघ्नों से डरे वो सत्य का मार्ग ना अपनाए। सत्य के मार्ग पर बाधाएं हैं या नहीं, उसमें भी पवित्रता का मार्ग, चाहे कुमार है चाहे कुमारी, अनेक माताएं, विघ्नों से भरा होता है, साथ मिलता नहीं। तो पहले ही सोच लेंगे बहुत परेशानियां हैं, छोड़ो पवित्रता, क्या भगवान तो मिलेगा लेकिन मुसीबत तो कोई चलेगा आगे, लेकिन चलने वाले चल रहे हैं ना, आप सब चल रहे हैं। इसलिए अपने को तैयार कर दें, विघ्नों से अधिक शक्तिशाली हम हैं, क्योंकि हमारे साथ, गीत में थी ये सब बातें, बाबा हजार भुजाओं सहित हमारी छत्र छाया बना हुआ है। एक हिम्मत का कदम हम बढ़ाते हैं तो बाबा हजारों बढ़ा देता है, उठा लेता है अपनी बाहों में हमें। केवल हिम्मत चाहिए, दृढ़ता चाहिए। और अनेक कन्याओं के अनुभव हैं, कोई कन्या मेरी बात बुरा न मानना, ज्ञान में चलते थे, शादी हुई, माँ बाप ने फोर्स किया कन्याओं को घर में नहीं रख सकते, फिर शादी करने के बाद जीवन सुखी नहीं, फिर बाबा का बनते हैं, परिवार का सहयोग नहीं मिलता, तो जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ रहता है। मैं बिल्कुल खोल के बता दूं, मैं बुरा मानने की जरूरत नहीं, युवकों में किसी का किसी से प्यार हो जाता है, उन्हें पता नहीं चलता कि जिससे तुम प्यार कर रहे हो वो व्यक्ति कैसा है, उसका घर कैसा है, उसकी माँ कैसी है। प्यार हुआ, शादी की, चार दिन के बाद ही पता चल गया तुमने नर्क में पैर रख दिया है, जीवन भर पछताने के अलावा कुछ नहीं। एक साल के बाद डिवोर्स हो गया, घर वालों ने कहा हमारे पास नहीं आना है, कहीं भी जाओ मर जाओ, बेचारे अकेले रहते हैं, जीवन दुर्गति में। सब बचेंगे इससे युवक, बचना है बहुत अच्छी तरह। समझदारी इसी में है कि भगवान मिला है तो पवित्रता ही हमारा जीवन है। बहुतों के साथ हो गया है, बहुतों के साथ, बहुत केस आते हैं इसके रोज, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं संसार में। सबसे पहली चीज जो हमें करनी है, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, विघ्नों से घबराएंगे नहीं। जिसमें जिन्होंने आप में से चंद्रगुप्त का सीरियल देखा है वो जानते हैं कितनी कठिनाइयां उसको सहन करनी पड़ी। चाणक उसको गाइड तो करता है पर मदद नहीं करता, जाओ विजय यात्रा पे भेजते हैं उसको तो कहता है जो तुम्हारे शत्रु हैं उन्हें लेके जाओ, वो कहता है शत्रुओं को लेके जाऊं या तो मित्र चाहिए, कठिन यात्रा और शत्रु का नहीं, शत्रुओं को मित्र बनाना सीखो। कैसे उसको मांझा, हथौड़ी लगी, पॉलिशिंग हुई, कठिनाइयों से गुजारा। अशोक का भी चल रहा है, अशोक जो इतिहास का महान सम्राट, भारत के इतिहास की जो शोभा है, कितने कष्टों से उनका बचपन गुजरा, कितना कष्ट लोगों ने उन्हें दिया, लेकिन जो कष्टों से नहीं घबराते, जो हर कष्ट से कुछ सीख कर आगे बढ़ते हैं, वो महान बन जाते हैं। इसलिए डर नहीं, विघ्न आएंगे। बाबा तो ये कहा करते थे, ज्ञान मार्ग पर कदम रखना माना विघ्नों का आह्वान करना। स्वयं बाबा के साथ भी हुआ, जिसको कोई कभी गाली नहीं दी थी जीवन में, बाबा का बनते ही गालियों की बौछार होने लगी। आप सब में भी यही अनुभव होंगे सबके, पहले तो किसी ने कुछ कहा नहीं होगा, भगवान के मार्ग की ओर कदम बढ़े, अब हम देखते हैं तुम्हें कहाँ जाते हो। माताओं को बड़ा कष्ट होता है या नहीं, लेकिन बहुत बहादुर माताएं शिव शक्ति बनकर आखिर विजयी हो ही जाती हैं। बाबा हमारे साथ है, तो इन चीजों से डरना नहीं है। आएंगे और हमें शक्तिशाली बनाएंगे, हमारे विवेक को जागृत करेंगे, हमारी सोई हुई शक्तियों को बढ़ाएंगे। सब अपने को तैयार रखें, तैयार हैं या नहीं? या कोई ये सोचते हैं भगवान मिला, उसका साथ मिला, फिर ये विघ्न क्यों? कई माताएं मुझे कहा करती है, मैंने कई बार सुनाया है, हमारा गुरु ही अच्छा था, कोई बात आती थी उसके पास जाते थे, विघ्न हटा देता था। बाबा तो कहता है नहीं, तुमने किया है तुम भोगो। ब्रह्मा को भी कह देता था खांसी मैं थोड़ा ही तुम्हारी हटाऊंगा, तुमने किया है तुम भोगो। और हमारा गुरु होता था खांसी वांसी सब दूर कर देता था, हमारा गुरु अच्छा था। लेकिन गुरु राजा ही देता क्या स्वर्ग की? नहीं, गुरु पतित से पावन बना देते क्या? बाबा हमें शक्तिशाली बनाता है। खुद अपना मार्ग चुनो, खुद शक्तिशाली बनो, ताकि तुम संसार को बहुत कुछ दे सको। तुम पूर्वज हो, महान आत्माएं। सब तैयार करें अपनों को, विघ्नों से घबराना नहीं है। आने वाले दिन विघ्न कम होंगे या ज्यादा? देखो विनाश माना ही विघ्न ही विघ्न, विघ्न ही विघ्न। रोने चिल्लाने के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। हमें अपने को बहुत स्ट्रांग करना है और आने वाले समय को फेस करने के लिए तैयार रहना है। मैं एक चीज पहले ही सबके लिए बता दूं, आगे बढ़ने से पहले, कईयों के जीवन में बहुत ही विघ्न आते हैं। किसी माता का फोन था अभी, यहाँ आते आते पति छोड़कर चला गया घर, लड़की की शादी हो गई, वो ठीक है दुबई में, लड़के को पैसे की कमी के कारण बीटेक में था, बीटेक पूरा नहीं करा पाए, अभी वो गया है दुबई में, कुछ इंटरव्यू आदि दे रहा है, मैं क्या करूं जो सफलता मिल जाए। कठिनाई होती है ना माताओं को, अकेली हो जाती है माताएं, बच्चों को भी संभालना, पढ़ाना भी है, उनकी भी चिंता, अपनी भी चिंता, घर की भी चिंता। लेकिन क्या करें, जिसका योग अच्छा उसकी समस्याएं समाप्त, ये भूलना नहीं। खास मैं माताओं को कहता हूं, अपने मन को इतना विचलित न करो कि योग भी न लगे। ये हो जाता है, किसी गलती नहीं है। समस्याएं बहुत हो तो मनुष्य का मन विचलित हो ही जाता है। कहना अलग है कि न करो, परंतु होता है। इसलिए कुछ अभ्यास अपने चालू रखना है। हम सबको जिस चीज की जरूरत है, पहला ज्ञान का बल। इसलिए कभी बाबा की मुरली छोड़नी नहीं है, तो अनेक सुंदर बातें मुरली से प्राप्त होती रहेंगी। दूसरा है स्वमान का बल, जो हमारी सोई हुई शक्तियों को जगा देता है। और तीसरा, जब कुछ न हो तो ये याद रख लेना चाहिए, बाबा हजार भुजाओं सहित मेरे। गीत गाते रहो मन में, और कुछ नहीं तो। गीत गाने से बहुत फायदा होता है, क्या फायदा होगा बताओ? आप गीत गाते रहो, ईश्वर अपने साथ है। पीछे वाले गाओ, गीत गाते रहो तो क्या फायदा होगा? बहुत सारी चिंताएं व्यर्थ खत्म हो जाएगा ना। सारा दिन गाते रहो, बाथरूम से लेकर खाने से लेकर सोने तक गाते रहो, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। अनेक चीजों से बचे रहेंगे, जो बार बार संकल्प चलता है, चिंताएं होती है, भय लगता है, मन परेशान होता है, उससे हम मुक्त रहेंगे। और देखो, एक माता ने बताया मुझे, यही की है, यही बैठी है, कि योग तो लगता नहीं पर बाबा के कमरे में जाके बाबा के चित्र के आगे बैठी रहती हूँ। ये भी कुछ तो अच्छा है। 3 बजे उठ जाती हूँ सवेरे, बाबा के चित्र के आगे बैठी रहती हूँ शांत में। इंग्लिश में कहावत है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ तो अच्छा है ना, सवेरे उठती है तो बाबा का प्यार तो है ना। बाबा के प्यार के बिना सवेरे क्यों उठेगी भला? फिर बाबा के सामने बैठते, बाबा भी तो देखता है ना, इसको मेरे से बहुत प्यार है, चलो कुछ तो दे ही दूं। खाली तो नहीं रहेगी ना आत्मा, तो कुछ करते रहना चाहिए। ज्ञान का बल, स्वमान का बल और ये स्मृति के बाबा हमारे साथ है। व्यक्तिगत विघ्नों की हम बात करें, बिल्कुल स्पष्ट आपको जानना चाहिए, विघ्नों का बीज है इम्प्योरिटी, विघ्नों का बीज है क्रोध और अभिमान, वो सब विकारों में आ गए। जिसके पास प्योरिटी बहुत अच्छी है, विघ्न आते हुए भी सहज समाप्त हो जाएंगे। प्योरिटी का बल बहुत बड़ा बल है, इसको बढ़ाते चलना है। सब बहुत अच्छा अभ्यास करते रहे, मैं पवित्रता की देवी हूँ, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ, और योग बल से हमारी प्योरिटी आपे ही बढ़ती जाएगी। कुछ संस्कारों के कारण जीवन में विघ्न आते हैं, बोलो कौन सा संस्कार? बुरा बोलने का संस्कार। अनुमान की जगह मैं एक दूसरा शब्द बोलूंगा, डाउट, बहम, बहम का संस्कार। कहीं बात छोटी सी होती है और बहम लगा के, बहम के कारण मनुष्य अनुमान लगाएगा और उस बात को तूफान बना लेता है। आजकल कई जगह ये समस्या भी बहुत चल रही है, विशेष रूप से पति पत्नी के बीच में, दोनों नौकरी करते हैं। अब जब नौकरी करते हैं तो लोगों से कांटेक्ट तो होता ही है, तो दूसरे को डाउट होता है, ये उससे बात करती है कुछ गड़बड़ है, और यहाँ से खेल बिगड़ने लगता है। मैंने पीछे भी सुनाया था, एक केस आया, एक लड़की ने आईपीएस किया, आईपीएस माना वो एसपी बनेगी, बन गई होगी, डीवाईएसपी से शुरू कर देते हैं, पुलिस के बड़े ऑफिसर होते हैं ना ये। अभी उसका पति कहता है तुम इनसे बात करती हो, उससे बात करती हो, अभी ये तो बड़ी मुश्किल बात होगी। एसपी माना क्या होता है पता? डिस्ट्रिक्ट पुलिस का हेड, भबका ही उसका जबरदस्त होता है। अब वो किसे बात न करे, ये कैसे होगा? तो ये उसके पति की डाउटफुल नेचर एक बड़े विघ्न का कारण बन रही है। अब या तो वो नौकरी छोड़े या पति को छोड़े, एक ही मार्ग है। नौकरी वो छोड़ेगी नहीं, क्योंकि तो आईपीएस होना छोटी बात नहीं है। तो देखिए ये चीजें विघ्नों का कारण बन जाती है ना। अगर मनुष्य ओपन माइंडेड नहीं है, अगर उसके विचार सुंदर नहीं है, ब्रॉड माइंडेड वो नहीं है, तो छोटी छोटी बातों में वो परेशान रहेगा। माताओं के चेहरे देख रहा हूं मैं, किसी को लगता है मेरा पति इससे बात करता है, गया वो तो, और माता उदास है, खुश नहीं है। मुझे दिख रहे हैं यहाँ भी चेहरे, उदास है, खुश नहीं है। वो बात करना नहीं छोड़ेंगे, ये अपनी खुशी छोड़ती जाएगी, भगवान भी ऊपर रह गया, ये नीचे, और खुशी, इससे बचेंगे जरा, अपने विचारों को महान बनाएंगे। है ये सब है भी, गलत भी नहीं है, ये सब है, पर कलयुग के अंत में इससे अच्छा क्या होगा? कलयुग के अंत में देवता पति मिलेंगे क्या? मिलेंगे? मैं खोल के बता सकता हूँ कुछ चीजें, लेकिन मैं बताता नहीं, ये क्लास है हमारी रॉयल, पर हाल संसार का बहुत बुरा है, आसुरी संप्रदाय है, विकारों की आग लगी हुई है। इसलिए कुछ चीजों को साक्षी होकर स्वीकार करना ही पड़ता है, पड़ेगा या नहीं, नहीं तो परेशान रहेंगे। तो अपने विचारों को महान बनाएं, और अगर दूसरे में ऐसी कमी है घरों में, तो पहले तो बात करें, क्योंकि बात करने में अच्छा नहीं होता रिजल्ट, गुस्सा हो जाता है। वाइब्रेशंस दें, पवित्र भोजन खिलाएं आप उन्हें, तो दूसरे की वृत्तियां भी पवित्र रहें। पर कलयुग के अंत में आप सब जानते हैं ये काम है कठिन। स्वयं के जीवन में विघ्न और क्यों आते हैं? देखिए, एक कुमार ने फोन किया, मेरा सब कुछ अच्छा है, केवल एक चीज से मैं बहुत दुखी हूँ कि मेरे में है बहुत आलस्य। बड़ा सुखद है ना ये, सोने को मन करता, मीठी नींद आ रही है। छोटी कन्याओं को बहुत आती है ना, कोई उठाए तो लगेगा दुश्मन है हमारा, सोने दो हमें, बाबा से तो पीछे बात कर लेंगे ना, योग बाद में लगा लेंगे, 8 बजे 4 बजे लगाना जरूरी है क्या? तो उसका आलस्य उसके लिए बहुत बड़ी बाधा। सब कहा मेरी प्योरिटी बहुत अच्छी, मुझे ज्ञान योग में बहुत रुचि, पर मैं आलसी, कुछ काम करने में भी आलसी, केवल उठने में नहीं, काम करने में, सेवाओं में, हर जगह आलसी। कहा ये मेरा बहुत बड़ा विघ्न है, मैं क्या करूं? तो हमें देख लेना है हमारा कौन सा संस्कार हमारे जीवन में विघ्न डालता है। क्रोध का संस्कार है, अहंकार का संस्कार है, ज्यादा बोलने का या ज्यादा सोचने का, दैहिक दृष्टि का या अवगुणी दृष्टि का, पर चिंतन करने का या सदा दूसरों को ही देखते रहने का, सोच लेना है। और कौन सा? मान शान का। कौन सा संस्कार है? सब विचार करें। कई लोग यहाँ भी आते हैं बाबा के पास मधुबन में सेवा करने, आप सब आए हैं, तो दूसरों को ही देखने लगते हैं? नहीं, अपने को चार्ज करना है, यहाँ शक्तियों से भरना है। सब तरह की आत्माएं हैं ना, एक स्थान पे जहाँ 500-800 लोग रहते हों वहाँ सब तरह के होंगे ना। मैं एक चीज हमेशा सुनाया करता हूँ जो सभी को बहुत काम आएगी, बाबा के शब्दों में तो राज्य स्थापित हो रहा है। राज्य में राजा कितने होंगे? एक जन्म में एक विश्व महाराजन और बाकी छोटे छोटे, बाकी सब प्रजा, प्रजा में अलग अलग तरह के। और दूसरी दृष्टि से इस तरह आप सोचें, मान लो हमारे पास 100 लोग रहते हैं, तो 100 में से टॉप क्लास 2-3, फर्स्ट क्लास 8-10-15, सेकंड क्लास 30-40, और कुछ थर्ड क्लास, और कुछ 9 क्लास फेल होने वाले भी। सब जितने भी संगठन आप देखेंगे उसमें ये 4-5 क्वालिटी देखने में आएंगी। सभी टॉप क्लास हों, सभी फर्स्ट क्लास हों, ये नहीं होता है। हमारी टीम बहुत सुंदर हो ये बहुत भाग्य की बात है, उसमें सब समझदार हों, सब जिम्मेदार हों, सब एक दूसरे को सहयोग और स्नेह देने वाले हों, ये तो निर्विघ्न रहने का एक सुंदर तरीका है। अब हमें अपनी सेवाओं को भी निर्विघ्न करना है, लेकिन पहली चीज है अपने जीवन को निर्विघ्न करें। इसलिए सबसे पहली धारणा मजबूत रखेंगे, सवेरे उठकर स्वयं में योग की शक्ति भरना, और फिर मुरली से स्वयं को अमृत से भरपूर करना। मुरली बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, उससे हमारे विवेक को, हमारी बुद्धि को रोज भोजन मिलता है। जो ये भोजन ग्रहण नहीं करते उनकी बुद्धि खाली रह जाती है, ये बहुत बड़ा लोस होगा। खाली होगी तो गंदगी भर जाएगी, इसलिए इन 2 चीजों पर सभी को बहुत ध्यान देना है। परिवारों को आपको निर्विघ्न बनाना है, सेवाओं को निर्विघ्न बनाना है। अब बताएंगे भाई बहने जो परिवार में रहते हैं, अपने परिवार को निर्विघ्न बनाने के लिए क्या करेंगे? अब भाइयों से पूछता हूँ, कुमार भी बता सकते हैं। शुभ भावना, और चलो माताएं भी सोच लो। परिवार को निर्विघ्न बनाना है, आत्मा देखना, ये बहुत अच्छी बात है। और बोलो, मास्टर सर शक्तिवान का बहुत अच्छा अभ्यास। और बोलो, मैं निर्विघ्न हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। एक सिंपल बात याद रखना, आगे अपने चिंतन को बढ़ाओ। निर्विघन अपने लिए, विघन विनाशक दूसरों के लिए, ऐसा सोच लो दोनों चीजें। एक छोटी सी बात याद रखेंगे, कई लोगों की नेचर है हर बात को समस्या समझना, और कईयों की नेचर है हर छोटी बात को तूफान बना देना। होती है या नहीं? हम इन दोनों से बचेंगे, बड़ी बात को भी छोटा कर देना, विघ्नों को विघ्न मानना ही नहीं, बहुत जरूरी है। एग्जाम का समय आ गया, बच्चे को बुखार हो गया, विघ्न है, लेकिन अगर बच्चा स्ट्रांग है बुखार में एग्जाम दे आएगा फर्स्ट क्लास, वो इसको विघ्न मानेगा ही नहीं। हर बात को विघ्न बना नहीं लेना है, मान नहीं लेना है, समस्याओं को समस्या मानना ही सबसे बड़ी समस्या है। है ही नहीं वो समस्या, हमें आगे बढ़ाने का साधन है। ये कॉमन बातें हैं, ये तो आती हैं। मान लो आप किसी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और दो लोग आपकी ग्लानी कर रहे हैं। कई लोगों के साथ ऐसा होता है क्योंकि एक आदमी उनके पीछे ही पड़ गया है, छोड़ता ही नहीं, जहाँ जाएगा उनके कदम खींचेगा, जहाँ जाएगा उनके आगे दीवार खड़ी करेगा, जहाँ जाएगा उनकी ग्लानी करेगा। लो चार लोग उनकी महिमा करें तो बीच में जाके ग्लानी करेगा। कईयों के साथ ऐसा होता है, एक व्यक्ति विघनकारी बन गया है, लेकिन अगर आप स्ट्रांग हैं आप उसकी परवाह नहीं करेंगे, अपनी योग्यताओं को बढ़ाते चलें, अपने मन को निराश न करें, संकल्प कर ले इन चीजों से हमें रुकना नहीं है, तो बाबा का इतना साथ मिलेगा कि विघ्न डालने वाले पीछे हट जाएंगे। संकल्प कर लो हमें विघ्न डालने वालों को हरा देना है, समझ गए ना? हम निराश नहीं होंगे, हम हार नहीं मानेंगे, हम बाबा के साथ को भूलेंगे नहीं, और ये याद रखेंगे। बाबा का बहुत सुंदर महावाक्य है, कई बच्चे समस्या आने पर इतने उलझ जाते हैं कि ये भी भूल जाते हैं, क्या हमारा साथी कौन है। मैंने भी ये नोट करके रखा हुआ अपनी बुद्धि में अच्छी तरह, कभी भी कोई बात याद आए मुझे जैसे आवाज आती है कि ये नहीं भूलना है साथी कौन है। ये बातें तो आई हैं और जाएंगी, बाबा के शब्दों में बातें तो जाने वाली ही हैं। स्थिति को नहीं बिगाड़ना है तो हमें ये इतना संभालना है, अपने को इतना उलझा नहीं देना है। हमें ये याद रखना है बाबा हजार भुजाओं सहित हमारे साथ है, इससे हमें उसकी शक्तियां मिलती रहेंगी, हमारा फोर्स डबल होता रहेगा, और जो आने वाली बातें हैं वो कमजोर पड़ती जाएंगी। तो विघ्नों को विघ्न मानना नहीं है, और याद रखना है जिसको आगे बढ़ना है उसे संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। देख सोच ले, आगे बढ़ाने वाला भगवान और रोकने वाले मनुष्य, हजार लोग मिलके आपकी टांग खींच रहे हो, लेकिन बाबा ने आपका हाथ पकड़ा हो आगे, तो कौन ले जाएगा आगे, है या नहीं? लेकिन इस विश्वास की बहुत जरूरत है। मार्ग रोकने वाले कमजोर मनुष्य हैं, और साथ देने वाला सर्वशक्तिवान है, और हम स्वयं भी बहुत शक्तिशाली हैं। ऐसी स्मृतियों से अपने चित्त को हल्का रखना है, हम जितने हल्के विघ्न भी उतने ही हल्के, और हम सोच सोच कर भारी हो जाए तो छोटी बात भी हमें भारी लगने लगती है। सभी भाई बहने इस फॉर्मूला को अपना लें आज से, बाबा के महावाक्य पक्के नोट कर लो, बातें बड़ी नहीं होती। हम बोलो आगे पीछे वाले बोलो, हम पीछे वाले का भी सुन सुन के इधर उधर की भी सोच रहे हो, इन्वॉल्व हो जाओ इस चिंतन में। बातें बड़ी नहीं होती, हम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हैं। कई बातें तो बहुतों के जीवन में ऐसी होती हैं कि सोच सोच के जब परेशान हो गए और उस व्यक्ति के पास पहुंचे और बात क्लियर की तो पता चला ये तो बात थी ही नहीं, ऐसे ही परेशान हो रहे थे, थी ही नहीं बात। इसलिए ज्ञान और योग की शक्ति से हमें अपने को बहुत पावरफुल बना देना है। बस ये धारणा बहुत मदद करती है, लाइट बहुत हल्के। बातें आएंगी, कलयुग का अंत है, हमारे हिसाब किताब भी चुकतू होने हैं, ये युग भी बदलने वाला है, अब जल्दी बहुत बातें आने वाली हैं। आज मैं देख रहा था हमारे ज्ञान सरोवर में, मैं घूम रहा था तो बहुत बुजुर्ग व्यक्ति बेचारा डंडा लेके धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ रहा था, सीढ़ी चार पांच ही थी, चढ़ के ऊपर आया फिर बैठ गया, थोड़ा सा चला फिर बैठ गया। मैं सोच रहा था उसके बारे में, सोचना तो मुझे नहीं था क्योंकि मुझे अपने अभ्यास करने थे, पर वो आ ही गया तो मेरा विचार चला। मैंने कहा देखो इस मनुष्य ने अपना जीवन 80 साल का तो हो गया होगा, किस किस तरह व्यतीत किया होगा, हो सकता है जब ये अब बुजुर्ग हो गया तो इसका साथी कोई न रहा हो संसार में, वो डंडा ही साथी रह गया हो, बस होता है ना ये भी। हमें जब हमारे अंदर ताकत है, जब हम ठीक ठाक हैं, जब सब कुछ अच्छा है तो बहुत अच्छी तपस्या कर लेनी चाहिए। जब बूढ़े हो जाएं, माताएं बैठी हैं कहीं, पता नहीं योग लगे या न लगे, बुद्धि इतनी विचलित रहने लगे कि स्थिरता हो ही न पाए, इसलिए जो युवक बैठे हैं बहुत सारे कन्याएं कुमार, यही समय है सुंदर तपस्या का, यही समय है अपने में बल भरने का, यही समय है अपनी विवेक शक्ति को बहुत बढ़ा देने का। सभी युवक 40 साल के नीचे नीचे वाले अपनी शक्तियों का, अपनी बुद्धि का, अपनी तन की शक्ति का प्रयोग करें अच्छी साधना करने में। जो बहन बात कह रही थी, रोज सवेरे उठकर 3 संकल्प अवश्य किया करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विजयी रतन हूँ, निर्विघ्न हूँ, मेरा जीवन निर्विघ्न है। उठते ही करेंगे ये संकल्प, अपने को याद दिलाएंगे, और मैं विघ्न विनाशक हूँ, ये है कि कोई विघ्न आ गया उसको नष्ट करने की शक्ति मेरे पास है, किसी दूसरे के पास विघ्न आ गए उनको नष्ट करने की शक्ति मेरे पास है, परंतु सवेरे उठते ये संकल्प करना कि मेरा जीवन निर्विघ्न है, मेरा परिवार भी विघ्न मुक्त है, मेरा पुरुषार्थ भी विघ्न मुक्त है, ये संकल्प सवेरे सवेरे का उठते ही, ये बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। बहुत बड़ा विघ्न बहुतों के पुरुषार्थ में रहता है, इस पर भी सभी को ध्यान देना है। मैं लिखना तो हम उन्हें सिखाते हैं कि लिखने से एकाग्रता अच्छी हो जाती, वैसे याद करेंगे तो मन फिर इधर उधर भी भटक जाएगा। ये तो सवेरे संकल्प करने, तीन तीन बार बस, वो मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, तो अपने पुरुषार्थ में विघ्न न रहे। कौन कौन से विघ्न पड़ते हैं, मैंने कहा ये एक टॉपिक है बहुत बड़ा, इस पे अच्छी चर्चाएं हो सकती हैं, हम इसको थोड़े में लेंगे। अब पुरुषार्थ में कौन से विघ्न आते हैं बोलो। देखो मैं एक छोटी सी बात सबसे पहले बहनों को कहा करता हूँ कि अपने घरों में 3 बार बैठकर योग करो, 20-20 मिनट। लेकिन बहने माताएं क्या करती हैं, क्यों नहीं हो पाता, ये ध्यान दे संकल्पों पे, एक विघ्न क्या करती है माताएं हैं? काम बहुत है, छोड़ो ना कल कर लेंगे, और वो कल फिर कभी नहीं आता। आज एक माता से यहीं बैठी है, मैंने प्रोग्राम बनवाया वहीं, तो उसने बनाया सवेरे 4 बजे योग करूंगी, फिर 10 बजे करूंगी, फिर 12 करूंगी, फिर शाम को 6 बजे या 7 बजे करूंगी, 10 पर 20-20 मिनट। ऐसा अगर कोई कर ले तो अनेक विघ्न नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि योग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें बार बार प्रैक्टिस करनी पड़े। यहाँ भी आप देखो, 4 बार बाबा के रूम में जाकर बैठो। आप सब कहेंगे इतने लोग 4 बार बैठेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। शांति स्तंभ पर बैठ जाओ शाम के टाइम, वहाँ बहुत अच्छा लगेगा। स्त्री हॉल, मेडिटेशन हॉल में भी योग होते हैं, यहाँ बैठो। बैठने से, एकाग्रता होने से, प्रैक्टिस होने से धीरे धीरे योग पे रुचि बढ़ती जाएगी। छोड़ ही दिया तो छूट जाएगा। फिर अरुचि भी ऐसी है, वो भी इतनी बढ़ेगी कि रुचि होगी ही नहीं। और ये छोड़ने की जो आदत है, पोस्टपोन्ड करने की आदत, आज बहुत बिजी, आज मेहमान आ गए ना, कल से शुरू करेंगे, कल, आज तबीयत ढीली हो गई, कल से करेंगे, फिर कल, आज बहुत काम हो गया, कल से करेंगे, बस पूरा हो गया। इसलिए जिसको करना है, कुछ भी हो करना है, इससे आपकी शक्तियां बढ़ेंगी। देखो बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कभी कही है, अगर तुम योग युक्त होकर कर्म करते हो तो एक तुम्हारी शक्ति काम में लगती है, दूसरी बाबा की शक्ति, डबल फोर्स से काम होता है, इसलिए कार्य जल्दी हो जाता है, निर्विघ्न हो जाता है। ये नहीं कि योग में काम करेंगे तो देर लगेगी, जल्दी होगा, क्योंकि डबल फोर्स काम कर रहा है, बुद्धि भी ठीक काम करेगी, मन भी शांत रहेगा, हाथ भी एनर्जेटिक रहेंगे, काम जल्दी हो जाएगा। ये अनुभव सबको करके देखने हैं। हमें यज्ञ को भी निर्विघ्न बनाना है। स्वयं के पुरुषार्थ में क्या विघ्न होते हैं वो हर एक के अलग अलग हो सकते हैं, आप उनको जांच करें, उनसे मुक्त हो जाएं। और जिसका पुरुषार्थ निर्विघ्न हो जाता है उसका अपना जीवन निर्विघ्न, उसका परिवार निर्विघ्न, और जो लंबा काल निर्विघ्न रहते हैं वही बन जाएंगे विघ्न विनाशक। ये भगवान वाच है, जो लंबा काल निर्विघ्न रहते हैं वही विघ्न विनाशक बन जाते हैं। और ये भी बाबा ने कह दिया है, तुम्हें केवल अपने विघ्न ही नष्ट नहीं करने हैं, तुम्हें तो सारे संसार को विघ्नों से मुक्त करना होगा। ऐसा समय आ रहा है, विघ्नों के तूफान उठेंगे, विघ्नों के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा, बीमारियां भी फैलती जा रही हैं बहुत, मानसिक रोग भी, कैंसर भी, और ये दुनिया भर के बुखार जो निकले हुए ये बढ़ते जाते। मैं तो सुना था विदेशों में कोई वायरस ही फैल गया है, किसी ने आज मुझे बताया IAS वालों पे उसका ज्यादा मार हुई है। मुझे तो पता नहीं, मैं पढ़ता नहीं भाई, मुझे मौका नहीं मिलता अखबार आदि पढ़ने का, टीवी भी नहीं देखने का। तो किसी ने बताया कि वो लोग जीवाणु अस्त्र बना रहे थे, उनमें विस्फोट जो हुआ तो सब पे इफेक्ट आ गया। मैंने कहा तो बड़ी अच्छी बात है, पाप का फल साथ साथ मिल गया, क्योंकि वो तो स्किन पे गड़बड़ कर देते हैं ना, स्किन उनकी फूलने लगी, ऐसा कुछ हो गया है जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता। तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि वो ये काम कर रहे होंगे, रासायनिक बॉम्ब्स बना रहे होंगे, जीवाणु बॉम्ब भी होते हैं आजकल, जिनमें कीटाणु से डाल दिए जाते हैं, वो सबकी स्किन को खराब कर देंगे, एकदम बेचैनी पैदा कर देंगे। तो ये लोग तो ऐसा काम करते ही हैं, तो वो फट गए होंगे और उसका फल नहीं मिल गया। तो अपने पुरुषार्थ को ऐसा करना है कि हमें संसार को निर्विघ्न करने में मदद करनी होगी। इसलिए रोज सवेरे जो ऐसा महान कार्य करना चाहते हो वो रोज सवेरे बाबा से कुछ दिन वरदान लिया करें। कौन सा? देखो बाबा का हाथ सिर पर, तिलक लगाया मस्तक पर, और वरदान दिया विघ्न विनाशक भव। हम इसको स्वीकार करेंगे कि बाबा से, वरदाता से, परम सद्गुरु से मुझे ये वरदान मिल गया है। ये प्रैक्टिस कुछ आत्माओं को तो करनी है, कुछ श्रेष्ठ योगियों को विघ्न विनाशक बनना है, ताकि एक जगह बैठकर यज्ञ को भी विघ्नों से मुक्त कर सकें, परिवार को भी और संसार में बहुत लोगों को भी मदद कर सकें। बहुत बड़े विघ्न कहाँ से आएंगे? प्रकृति की ओर से, क्योंकि प्रकृति को मनुष्य ने नष्ट किया है। वैज्ञानिक भी कहने लगे हैं और बाबा ने तो बताया हुआ है, प्रकृति कुपित होती जाती है, बहुत क्रोधित हो जाएगी, सब कुछ नष्ट कर डालेगी, वहाँ किसी की चाल नहीं चलेगी, वहाँ न एटम बम काम आएंगे, न अमेरिका की शक्तियाँ काम आएंगी, आएगा कुछ काम? न कोई मनुष्य कुछ कर सकेगा। किसकी काम आएगी शक्ति? शिव शक्तियाँ काम आएंगी। क्या करेंगी शिव शक्तियाँ? हम सभी को देखो, प्राकृतिक प्रकोप तो होंगे ही, हमारे फायदे के लिए होंगे। क्यों? छोटी सी बात, क्यों? सारा सतयुग का माल नीचे है, चाहिए आपको या नहीं? वो चाहिए तो उसको ऊपर आने देना, वेलकम, आ जाओ। दूसरा, ऊपर की जो जमीन है ये फसल अन्न पैदा नहीं कर रही, इसकी शक्ति नष्ट हो गई है, ये नीचे चल जाएगी, नीचे की उर्वरक भूमि ऊपर आ जाएगी, अन्न फल सब आराम से पैदा होंगे, मेहनत ही नहीं लगेगी। इसलिए प्राकृतिक प्रकोपों में कहीं कहीं प्रकृति के प्रकोप इतने भयानक होंगे कि ये तो मनुष्य पीछे सोचेगा कि नीचे का माल ऊपर आएगा। बहुत तेज तूफान चल रहा है, भयानक बारिश हो रही है, बिजली गरज रही है, मकान गिरने लगे हैं, एकदम मृत्यु समीप आ गई है, मर रहे हैं लोग, ऐसे में क्या करना पड़ेगा? इस सीन की आप कल्पना करो, तेज हवा चल रही, छतों को उड़ा कर ले जा रही है, मनुष्यों को उड़ा कर ले जा रही है, ओले बरस रहे हैं तेजी से, लोग मर रहे हैं, हाहाकार हो गया, बिजली नहीं है, पानी नहीं, अन्न नहीं, क्या करेंगे? प्रकृति को शांत करेंगे, उस समय इसको शांत करना आवश्यक होगा, फिर करेगी, लेकिन उस समय प्रकृति को शांत करना परम आवश्यक होगा। कौन करेंगे? शिव शक्तियां करेंगे ना, ठीक है, तैयार हो जाओ। शिव शक्तियां तैयार हैं भाई, सेना तैयार है शिव की? कौन कौन है जरा हाथ उठा देंगे? अच्छा ठीक है, तो प्रकृति को शांत वो करेंगे जो प्रकृति के मालिक बन गए होंगे, जिन्होंने प्रकृति को अधीन कर लिया होगा। प्रकृति सबसे पहली है देह, कर्मेंद्रियां, जो देहभान से मुक्त हो गए, जो एक सेकंड में शरीरी होने के अभ्यास तक पहुंच गए, और जो बहुत योग की शक्ति और पवित्रता की शक्ति से संपन्न हो गए, वो योगयुक्त होकर मैं प्रकृति का मालिक, मास्टर, सर्वशक्तिवान हूँ, प्रकृति को आदेश देंगे, अब शांत हो जाओ जल्दी। और देखते देखते 5-10 मिनट में प्रकृति शांत हो जाएगी। यहाँ प्रकृति को शांत करना परम आवश्यक होगा, नहीं तो देखने वालों को ऐसा लगेगा आज कुछ भी बचने वाला नहीं है। तो हम सभी अपने को योग्य बनाएंगे। टॉपिक बहुत बड़ा है, और भी बहुत सारी चर्चाएं हो सकती हैं। कल सवेरे उठते ही सब वो 3 संकल्प करना, रोज करना 3-3 बार, और बाबा से विघ्न विनाशक का वरदान लेना है। ओम शांति।